नमस्कार। बात उन दिनों की है जब उर्दू की प्रसिद्ध कथा लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर को भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन दिनों पत्रकारिता के जगत में भी उनका सिक्का जम चुका था। जब वह लंदन आई तो परवेज आलम ने अपनी ऐनी आपा से मुलाकात की और यही सवाल उनके सामने पेश किया कि आप ऊंचे दर्जे की कथाकार भी हैं और ऊंचे दर्जे की पत्रकार भी, तो ये बताइए कि एक कथाकार को साथ ही पत्रकार होने से अपने लेखन में मदद मिलती है तो कितनी और नुकसान होता है तो कितना। तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने कहा था,
असल में ऐसा है कि अगर मैं बिल्कुल एक चीज होती है जर्नलिस्ट, जो आप जानते हैं जर्नलिस्ट, अब उसका आप फिक्शन लिखिए, उसका आप नॉवेल लिखिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, वो किस्म की डायरी सी हो जाएगी। और बहुत सी चीजें हमारे यहाँ आजकल जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि कल जो चीज आपने लिखी है वो आज बासी है, ह्यूमन लेवल पे भी। यानी इतना कत्लो गारत, इतनी तबाही हर तरफ है आजकल दुनिया में कि अब मौत की खबर भी वो दहशत या वो गम दुख नहीं पैदा करती इंसानों में, पढ़ने वालों में। ये जो टीवी ने इसमें बहुत असर किया इस चीज में, जो पहले करती थी, या तबाही की, इतनी तबाही और दहशत पिछले हो ही रही है हमें पता है। लिहाजा अब आप उसमें क्या कहेंगे, उसके लिए फिर अगर आप आर्टिस्ट, अगर आप नॉवलिस्ट हैं, तो उसमें आपको कोई चीज ऐसी सूझ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने भी इराक के बारे में कितनी खबरें आई हैं, टीवी पे कितना आया है
जी।
एक चीज मैं कभी नहीं भूलती, वो मुझे बराबर हॉन्ट करती है कि एक जो भी पिछले दिल्ली में मैंने जो न्यूज पे देखा, न्यूज रील में, कि टीवी के उसमें, दूरदर्शन के उसमें, कि वो एक औरत है नीला फ्रॉक पहने खड़ी है, उसका जिसम उसके जख्मी हो गई है, उसके माथे पे खून है, पीछे उसका टूटा हुआ घर है जिस बमबारी से तबाह हुआ है, और वो कह रही वाय वाय। वो जो है सिर्फ एक ये शॉट था मेरे ख्याल में 15 सेकंड का रहा होगा, 20 का हद से हद, वाय बस। अब वो ये हजारों न्यूज रील्स पे ये एक मंजर भारी है, यू नो, इससे सो मच, इतना। तो अब वो बहुत से लोगों ने उसको देखा, ठीक है इतनी खबरें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, बमबारी हो रही है, उसमें एक शॉट वो भी था, लेकिन मेरे दिल में वो दिमाग में बैठ गया, वो नहीं निकलता इमेज। तो इसी तरह होता है कि राइटर की एक जो कहना चाहिए वो जो एक निगाह होती है, इनसाइट, वो होती है,
वो शायद सहाफी से बहुत ज्यादा मीलों आगे।
हाँ, तो सहाफी से, मतलब सहाफी भी आजकल दो तरह के हैं ना, एक तो सीरियस जर्नलिज्म है, इन डेप्थ जिसे कहते हैं, और एक बिल्कुल वो है जैसे हम रोज चालू जिसे कहते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ फलाना, और एक आजकल हमारे यहाँ मिर्च मसाले वाली जर्नलिज्म आ गई है, बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन अखबार उसी से बिकता है। तो जो जरा गहरी किस्म की है हमारे यहाँ जर्नलिज्म, उसमें तो मेरे ख्याल में जो लिखने वाले अच्छे लिखने वाले हैं वो भी एक गहराई से लिखते हैं।
मैं एक बार फिर से लौटकर आपके साहित्य की ओर आ जाता हूं। आपको एक पत्रकार की हैसियत से इतना सम्मान मिला है, लेकिन उससे ज्यादा आपको सम्मान मिला है एक लेखिका की हैसियत से और एक नॉवलिस्ट की हैसियत से। ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, इसको आप देर आया दुरुस्त कहेंगे या कुछ?
अभी ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये तो यही सवाल मुझे हर एक ने किया, उसमें क्या, इसमें क्या बात है, मिल गया अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ।
सम्मान होते हैं, पुरस्कार होते हैं, इनाम होते हैं, किसी राइटर की जिंदगी में कितने अहम होते हैं?
अब अवार्ड है, इनकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अच्छी बात है कि अब हमारे यहाँ शुरू से आजादी के बाद फनकारों को अहमियत दी जा रही है, राइटर्स को, और तमाम जितने हमारे क्रिएटिव राइटर्स हैं या हमारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, उनको नवाजा जाता है इस तरह की चीजों से, जो कि बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है।
जैसे ग्राहम ग्रीन के बारे में कहा जाता है, उनको आखिरी वक्त तक नोबेल प्राइज ही नहीं मिला उनका जो साहित्य है, लेखन।
हाँ, अब ये देखिए अवार्ड्स के बारे में मेरे ख्याल में बात करना कोई वो है नहीं, इसलिए कि जैसे हमारे यहाँ क्रिटिक उर्दू के बड़े मशहूर थे अस्करी सर, मोहम्मद अस्करी, उन्होंने कहा था कि पर्लबक को नोबेल प्राइज मिल गया। अब ये तो
अच्छा।
अब ये इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते
जी, बहुत धन्यवाद किया आपने। मैं फिर एक और मौजू की जानेब आ जाता हूँ। एक पुराना नॉवेल आपने डिस्कवर किया है, नश्तर, उस पर कुछ रोशनी डाली?
हाँ भाई, वो मैं उसके सिलसिले में तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो नॉवेल बहुत पुराना है।
किस्सा क्या है?
किस्सा ये है कि ये नॉवेल 1790 में लिखा गया, जो जबान उसकी थी वो हिंदी और फारसी का मिक्सचर था। अच्छा, फारसी उस जमाने में आमतौर पे कल्चर की जबान थी, लोग फारसी इसी तरह पढ़ते थे जैसे आजकल अंग्रेजी पढ़ते हैं, और वो सब काम फारसी ही में होता था। तो 1790 में ये नॉवेल लिखा गया। ये इसके जो लिखने वाले था लड़का, वो एक बहुत नौजवान लड़का था, 21 साल की उसकी उम्र थी, उसका नाम था हसन शाह, और वो जिला कानपुर शहर की छावनी में वो एक अंग्रेज फौजी अफसर के यहां वो मुंशी था। अच्छा, उसने बिल्कुल ये अपना आंखों देखा उस वक्त का जो सोसाइटी का हाल था, जो सोसाइटी थी अंग्रेजों की, फौजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों की जो सोसाइटी थी, जो उनकी तहजीबी जिंदगी थी, उसका वो उसकी कहानी का बैकग्राउंड है। और जो वो नाच गाना मुजरे मुशायरे उस वक्त तक उन्होंने अपने हिंदुस्तानियों की तरह रहते थे, वो हिंदुस्तानियों ही की कल्चर उन्होंने इख्तियार कर रखी थी। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब गवर्नर जनरल वो हुए और वो हिंदुस्तान की असल हुकूमत उनके हाथ में आ गई, तब उन्होंने ये बीच में फासला खास तौर पे ये रखा कि हिंदुस्तानी जो है वो अंग्रेज हिंदुस्तानियों से अंग्रेज न मिले बराबरी से, उस वक्त तक मिलते थे। तो ये इस लिहाज से तारीखी तौर पर बहुत अहम नॉवेल है। बतौर कहानी के इसका जो स्टाइल है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आज का स्टाइल है। हाँ, और मगर उसको छोटा सा नॉवेल है, यानी वो कोई 150 सफे का होगा, उसको आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, इस लिहाज से कि उर्दू में तर्जमा उसका हुआ था 1898 में, और गोया वो उमराव जान अदा जो बहुत मशहूर है उससे एक साल पहले उसका तर्जमा उर्दू में हुआ था, वो भी किसी ने खास उसका नोटिस नहीं लिया। बार दफा ऐसी किताबें होती हैं कि कोई देखता ही नहीं, उनको पड़ी हुई है कोने में लाइब्रेरी में रखी हुई है, कोई नहीं निकालता। तो वो इत्तफाक से मैंने उसको, मुझे वो किताब मिली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, और वो मैंने देखी, तो मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं तो उसको देख पढ़ के दंग रह गई, क्योंकि ये तो इस तरह से हिंदुस्तान का पहला नॉवेल है, 1790 में लिखा गया है, जेन ऑस्टिन का गोया वो शख्स जेन ऑस्टिन के जमाने में था, उसने उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, उसने कोई अंग्रेजी नॉवेल नहीं पढ़ा था, लेकिन उसका स्टाइल बहुत मॉडर्न है, कैरेक्टराइजेशन बहुत सुंदर, कमाल की चीज है। तो मैंने उसका तर्जुमा अंग्रेजी में किया।
आपने तर्जुमा अंग्रेजी में
किया? हाँ, कर लिया मैंने, और अब मैं उसको आप कोशिश करूंगी कि छपे।
क्या बात है, अंग्रेजी में आपने उसका नाम क्या रखा है?
नाम मैंने भी नहीं सोचा, शायद मैं उसका नाम कैंप फॉलोअर्स रखूं, कैंप फॉलोअर्स, कैंप फॉलोअर्स।
वैसे उसका नाम नश्तर है,
नश्तर नाम है
जी। ये तो किसी और के उपन्यास की नॉवेल की बात हो रही थी, मैं आपके ताजा उपन्यास की जानिब आ जाता हूँ, चांदनी।
हाँ, चांदनी बेगम
जी।
चांदनी बेगम हमने लिखा है अभी कोई लास्ट ईयर छपा शायद ये, और ये लखनऊ की एक कहानी है, दो तीन खानदानों की, जो आजकल के जो हालात जो हैं, आजकल के जो समाजी हालात हैं, जिनकी बैकग्राउंड में सियासी हालात भी हैं, वो तो इनकी इसकी बैकग्राउंड है। फिर एक कहानी में जिनके बारे में, एक तो मुझे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से मुझे बड़ी हमेशा से बड़ी दिलचस्पी रही है, चाहे वो किसी तबके के हों, मैं उसमें से कुछ आपको पढ़ के सुनाती हूँ
उसका एक अंश।
एक मैं चंद मिनट का। मेला भरने लगा, दरगाह शरीफ के हाथे के बाहर कुछ दूर पर बंगाली नट और उसकी औलाद नजरबंदी के खेल और करतब दिखलाती, उसके नजदीक मास्टर गुलाब ने सैरबीन जमाई, उनके मुकाबले में दिलफरोश नाटक कंपनी ऑफ काशीपुर ने डेरा डाला। मास्टर मुगरे को इल्म था कि न खास लखनऊ के भांडों की मानिंद एक जमाने में काशीपुर और मुरादाबाद के भांड और नक्काल भी मशहूर थे। उस्ताद मुगरे और मास्टर नब्बन खान मालिक दिलफरोश कंपनी यानी इंडियन शो बिजनेस के दो टाइकून तबादला ख्यालात में मसरूफ हुए। काम कैसा चल रहा है खान साहब, उस्ताद ने बीड़ी सुलगा कर पूछा। मंदा जहां बलब हैं, स्याह मखमली टोपी उतार कर उमर रसीदा नब्बन खान ने सर पे हाथ फेरा। बाले मियां की बैरक के मेरे हमारी तरफ भी जगह जगह हो हैं, मगर टेलीविजन से हमारी बधिया बैठ गई। मास्टर जी ने खामोशी के साथ इजहार अफसोस किया। खेमे के अंदर से अहलिया नब्बन खान की आवाज बुलंद हुई, अरे उठू, मंडवा भर गया, डूबी की नींद ना भरती, उठू। हमारी हिरवन है लाडो तेलन, बंदा खुदा नाम तो बदल देते, पब्लिक में यही चल पड़ा, पिछली वाली जो थी नाजो वो दौलत की हवस में आया की परमिंट बनवा दुबई को निकल ली। ये वाली हमें मेरठ की नौचंदी में मिली, तेली की लौंडिया है, घर से भाग आई थी, आवाज अच्छी थी, पर तालीम पर हमें मेहनत बहुत करना पड़ी। खास साहब ये कंपनी वारिद मरहूम ने कायम की थी। दाल मंडी आगरे की एक से एक गाने वाली हमारे कने स्टाफ पर थी। अब क्या करो, वक्त बदल गया। खेमे के अंदर गए, पान की थाली लेकर लौटे, घर में सलाम अर्ज करती हैं। मेरी दुआ कहना, मास्टर ने गिलौरी मुंह में रखी। नेक वक्त, जरा चाय तो भेजियो, नब्बन खान ने पुकारा, शताब्दी से।
वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब,
शुक्रिया।
आपने बहुत कुछ लिखा है और आपके जो बहुत सारे अफसाने हैं, कहानियां हैं, वो मशरिकी यूरोप की कई जबानों में उनका तर्जमा हुआ है, लेकिन मगरिब में उनका तर्जमा और खासतौर से मगरिबी जबानों में,
उसकी एक सियासी वजह भी है कि मशरिकी यूरोप और रशिया से किताबें मगरिब से आनी बंद हो गई थी। उनके पास सिर्फ हिन्दुस्तान की का लिटरेचर उनके सामने था, जिसको उन्होंने पढ़ा, एप्रिशिएट किया और उसको अपने यहां तर्जुमा किया। मगरिब के सामने इस किस्म का कोई मसला नहीं था, वो उनका पूरा हमेशा से यूरोसेंट्रिक उनका रहा है। और दूसरी बात यह कि अब एक इनके यहां ट्रेंड और भी है जो कि अफसोसनाक है, कि जिन कहानियों, जिन नॉवलों में हिन्दुस्तान का मजाक उड़ाया जाता है या उसका एक बहुत सीमी साइड पेश किया जाता है, वो यहां फौरन छप जाते हैं। जो नॉर्मल किस्म के नॉवेल होते हैं वो नहीं छप सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ने वाला है उसको कुछ बहुत वो कुछ चटपटी चीज मिले। वो चीज आप फिल्मों में भी देखी आ जाती
है। कहीं इसका ताल्लुक इस बात से भी है कि हिंदुस्तान के जो सियासी हालात हैं या जो समाजी हालात हैं, जो माशरा है, वो मुझे मशरिकी यूरोप का माशरा रहा, खासतौर से समाजवादी दौर में, उसमें कहीं कुछ यकसानियत किसी किस्म की हो, कहीं कुछ ऐसे तजुर्बे हों, ऐसे हालात हों जो दोनों शेयर करते हों, तो वो साहित्य को शेयर करने में भी आसानी होती हो।
नहीं, उनके तो मगरबी यूरोप का पूरा मगरब का पूरा रवैया जो हिन्दुस्तान के लिए या मशरक के लिए हमेशा से मुख्तलिफ है, उसमें कुछ सल्तनत का भी हैंगओवर शामिल है और बहुत सी बातें हैं। और मशरक में, ईस्टर्न यूरोप में और सोवियत यूनियन में ये मसला नहीं था। अब मैं समझती हूं कि अब जबकि उनके लिए दरवाजे इस तरह के खुल गए हैं तो गालिबन वो अब इतना जोर नहीं देंगे, अब हिंदुस्तान की किताबों पे इतना जोर नहीं रहेगा अब, क्योंकि अब उनके यहां सारी मगरिबी किताबें आने लगेंगी। ये फर्क है, मेरा अपना ये ख्याल है।
उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर के साथ परवेज आलम ने यह बातचीत की थी।